मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2016 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौ नौजवान साथियों के नाम हैं: किशन लाल, आप जोधपुर राजस्थान से हैं; राम सुरेश यादव, आप वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं; जीत कुमार प्रसाद, आप आरा बिहार से हैं; अनुराग वर्मा, आप दरभंगा बिहार से हैं; देवानंद कामत, नई दिल्ली से हैं; रोहित सिंह, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं; रामवीर सिंह धाकड़, गुना मध्य प्रदेश से हैं; सचिन यशवंत अड़गांवकर, अकोला महाराष्ट्र से हैं; और आकाश दीप, किरतपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो किशन, राम सुरेश, जीत, अनुराग, देवानंद, रोहित, रामवीर, सचिन और आकाश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब दौर है सूचनाओं का, और आज मुझे आपको दो अलग अलग सूचनाएं देनी हैं। एक छोटी सी सूचना ये है मित्रों कि कल यानी कि शनिवार को डेट होगी 24 दिसंबर 2016, समय है दिन के 11 बजे और स्थान है भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी। कल 11 बजे भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में मेरा एक व्याख्यान है और विषय है कि सिविल सेवा परीक्षा 2017 की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इस विषय पर मेरा व्याख्यान है। तो मेरे प्रिय श्रोता जो इसमें आना चाहते हैं, ये ओपन है, सबके लिए ओपन है, तो जिनके लिए भी संभव है, जो इच्छा रखते हैं, जिनका जरा भी इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं, तो उनको मैं अपने एकेडमी के बिहाव पर और सेंट्रल लाइब्रेरी के जो हेड हैं उनके भी बिहाव पर आप सबको वहां आमंत्रित करता हूं। मित्रों, यह एक सूचना है। और अब मैं दूसरी सूचना जो हर शुक्रवार को आपको दी जाती है, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो नहीं आता है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको शनिवार को अवेलेबल होंगी। प्रेस क्लिपिंग के साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए कुछ दूसरी सामग्रियां भी दी जाती है। मित्रों, आपको मालूम है योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक हिंदी और इंग्लिश के यानी कि टोटल 4 आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप सप्ताह में उस पर कभी भी समय निकालकर अभ्यास कर सकें, उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए लिखने का अभ्यास कर सकें। और फिर हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। दोस्तों, वीकली क्वेश्चंस के लिए मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करूंगा, कह लीजिए, आदेश तो नहीं दे सकता, आग्रह ही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि प्लीज आप जैसा भी लिख सकें। आपको लग रहा होगा कि आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि आप बहुत अच्छे उत्तर लिख सके, कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से ही तो पहुंचेंगे। आपकी जो भी अभी तैयारी है आप उसी को आधार बनाकर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छा लिखना चाहिए तो तैयारी कर लीजिए। 7 दिन आपको इसके लिए मिलते हैं, तैयारी कीजिए ना उस टॉपिक पर। और आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके सिविल सर्विस में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, भले ही वो उसी रूप में न पूछा जाए, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आपको मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो जो पिछले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो नेट पर अवेलेबल हैं, आप उनकी लिस्ट देख लें। फिर अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, आप उससे मिलान कर लें तो आपको शायद भरोसा हो जाएगा कि नहीं, इन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करना ही चाहिए। तो मित्रों, प्लीज डू दैट। लाखों स्टूडेंट बैठते हैं दोस्तों, हजारों का सिलेक्शन होता है, और मुझे लगता है कि लाखों में वो हजार स्टूडेंट तो होंगे ही जो लिखने का अभ्यास कर रहे होंगे, और यानी कि मेरे ही क्वेश्चन का वैसे भी अभ्यास कर रहे होंगे, और स्वाभाविक है कि फिर आप उनको हराकर बिना प्रैक्टिस किए आगे आ सकेंगे। ये तो थोड़े से चमत्कार की ही बात होगी और मुझे लगता है कि जिंदगी में ऐसे चमत्कार तो कम से कम नहीं ही होते हैं। तो मित्रों, मेरा आग्रह है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, उसमें आलस्य न दिखाएं, कोताही न करें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। तो आइए पहले लेते हैं हम कल के AIR न्यूज को। दोस्तों, AIR न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लिखी खबर के रूप में जिसकी एनालिसिस की जा सकती है, वो है दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं नजीब जंग जी, उन्होंने अचानक अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा। अब मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप न्यूज सुने या अखबार पढ़ें या मैगजीन पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आपके लिए न्यूज सुनना आप यूं कह लीजिए कि 15 मिनट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गंभीर किस्म की क्लास अटेंड करना है। और ठीक इसी तरह से अखबार पढ़ना भी आपके लिए एक बहुत ही गंभीर या फिलोसफिकल किताब पढ़ने की तरह है। आप उस तरह से अखबार को मत लीजिए जैसे कि कोई पान ठेले पर खड़ा होकर के जब तक पान बन रहा है तब तक वो अखबार पर नजर मार लेता है। और पढ़ने के बाद जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लगते हैं वो आपको नोट कर लेने चाहिए। ये कंटेंट ही तो आपको एक तरह से एनालिसिस करने के योग्य बनाएंगे, अदरवाइज तो फिर आप ऊपरी बातें करते रहेंगे। जैसे कल के न्यूज में आपको दो तीन कंटेंट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। जैसे एक आपने सुना न्यूज में कि जो कैशलेस सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं, नकदी रहित लेन देन की जो बात हो रही है, जिस पर हमारा देश अभी बहुत जोर दे रहा है, मित्रों कोशिश हो रही है कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताया जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस स्थिति पर पहुंच जाएं। क्योंकि देखिए, एक बार अगर ब्लैक मनी की सफाई हो गई और अगर आपने फिर से तुरंत उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो ये तो कैंसर के सेल की तरह है, कोशिकाओं की तरह है कि जरा सा भी छूटा वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी से जल्दी अगर हम कर लेंगे नकदी लेन देन रहित समाज की स्थापना तो डेफिनेटली ब्लैक मनी पर काफी कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए कल आपने न्यूज में सुना कि हमारे यहां 24 लाख, सोच करके देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 24 लाख 24 हजार, इसको थोड़ा सा चेक आप कर लीजिएगा। न्यूज में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 24 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात कही गई है, उसको एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। वो ये बात मुझे इसलिए अभी अकर कर गई क्योंकि हमारे यहां टोटल 5,80,000 के करीब गांव हैं, 5.75, 6 लाख लोग बोल देते हैं गांव हैं। अब ऐसे में 24 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा, हो सकता है वो 24,000, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कि कैसे सरकार के पास, इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो बातें हैं। पहला तो एक कंपोनेंट, आप कंटेंट आपको पता लग गया कि हमारे पास इतने, मतलब ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात है ग्रास रूट लेवल पर। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सरकार गांव तक कैसे पहुंचे, हम एक अपने दिमाग में संकट पाले हुए हैं ना कि दूर दराज के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं, तो हम वहां तक पहुंचे कैसे। सरकार तो दो माध्यमों से ऑलरेडी पहुंची हुई है, दो तीन माध्यम सरकार के पास ऐसे हैं कि सरकार ऑलरेडी वहां मौजूद है। तो सरकार का ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क शब्द शायद सबसे अच्छा होगा, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है, आप इसकी ताकत को अपने दिमाग में बसा लीजिए कि सरकार जब भी कोई योजना लागू करना चाहती है या जब भी कुछ बताना करना चाहती है तो उसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत केवल यह है कि उसे एक्टिवेट कर दिया जाए, उसे सक्रिय कर दिया जाए। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सोच करके देखिए, वो गांव की ही रहने वाली होती है, समाज उनको जानता है, वहां का समाज उनका समाज के साथ संबंध होता है, वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरह की भावनाएं भी होती हैं कि गांव के लिए कुछ करें। तो हर गांव में हमारे पास ऐसे लोग हैं या गांव के समूह में ऐसे लोग हैं, राइट। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि लगभग 1.2 लाख पोस्ट ऑफिस, 1.25 लाख मोटे तौर पर हमारे पास पोस्ट ऑफिस है हमारे गांव में, ये गांव में है, दूर दराज की जगह की बात हम कर रहे हैं, और हमारे पास 6 लाख गांव हैं, कुछ गांव तो बहुत ही छोटे हैं, तो मतलब यूं कह लीजिए कि हर 4 गांव के बीच में एक हमारे पास पोस्ट ऑफिस है। वो पोस्ट ऑफिस बैंक का काम करता है, वो पोस्ट ऑफिस सूचना पहुंच कर सकता है, सूचना पहुंचाने का काम कर सकता है। और ये जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, ये सरकार के हाथ हैं जो फैले हुए हैं, जो गांव तक हैं। ये हमारे पास दूसरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा, पंचायतों में आपको मिलेगा, पंचायतों में कोटवार जिसे आप कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे पास शक्ति है, बहुत बड़ी हमारी क्षमता है। फिर पंचायतों का तो कहना ही क्या है, पंचायतों में इतने पंच हैं, इतने सरपंच हैं, कहीं न कहीं तो सरकार से उनका जुड़ाव है और उन पंचायतों में काम करने वाले हमारे सचिव हैं। चलिए, मैं जानबूझकर के टीचर्स समुदाय को अलग कर रहा हूं, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी ओवरबर्डेंड हैं, मिड डे मील, क्लासेस लगना, संख्या उनकी स्कूलों में कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको और कुछ का दायित्व तो दे दिया जाएगा तो वैसे बहुत बड़ा संकट उनके सामने है, संकट और बढ़ जाएगा। और लगातार अब इस बात की डिमांड भी की जाने लगी है कि शिक्षकों को ये दूसरे कामों से अलग किया जाए, क्योंकि वो जो जरूरी काम है वही नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाने लिखाने का, बाकी दूसरे कामों में लगे हुए। तो ये डिमांड पूरे देश में बड़ी तेजी से उठ रही है, आपने ध्यान दिया होगा, अखबारों में भी ये बात आती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि सरकार के लिए दूर दराज के गांव तक भी कोई सूचना पहुंचा पाना, कोई शिक्षण कार्यक्रम कर पाना मुश्किल काम नहीं है। तो मित्रों, मैंने इसके माध्यम से आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जब आप सरकार के किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सिनेरियो, जो हमारा रूरल सिनेरियो है, ये मौजूद होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात तो हो ही गई है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अब हमारे जो दूर दराज के भी गांव हैं, कम से कम जो दूसरी जो सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, भले वो छोटी ही मुख्य सड़कें हों जो नगर की ओर जाती हैं, उनसे तो जुड़ ही गई हैं। तो हमारे पास अब इतना बड़ा संकट नहीं रह गया है कि हम अपने गांव में मतलब तब्दीलियां न ला सकें। एक तो देखिए, तब्दीलियां एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रही हैं, दूसरी तब्दीलियां वो हो सकती हैं जो हम ला सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी आपको आलोचनात्मक दृष्टि के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद आपने देखा, एक कंटेंट के रूप में ही मैं बात कर रहा हूं, कि आपने न्यूज में एक और बात सुनी कि अभी लगभग 500 शहरों को एक खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है और एक गूगल ऐप कल जारी किया गया है कि अगर आप शहर में हैं तो अगर आप गूगल मैप पर चले जाएंगे तो आपको करने के बाद, मैप पर जाने के बाद पता लग जाएगा आप जिस स्थान से होंगे कि शौच करने के लिए जो स्थान है वो कितनी दूर है। शहरों का हमारे ये बहुत बड़ा संकट है, खुले में शौच शहरों तक में ये है, और शहरों तो छोड़िए, मतलब कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर ये है, मतलब आश्चर्य होता है। आप फॉरेन में जाकर के देखिए दोस्तों, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं इन सब चीजों के लिए कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जब हम लोग कनाडा से अमेरिका आ रहे थे बाई बस, हम लोग बाई रोड ही आए और लगभग वो साढ़े छह घंटे की जर्नी थी, और वो जो बस है वो छोटे छोटे गांव से भी होकर के गुजरती थी और वहां छोटे छोटे बस स्टैंड होते थे। मतलब उन छोटे छोटे गांव के जो बस स्टैंड होते थे वहां भी शौच जो व्यवस्था होती थी, इतना साफ सुथरी व्यवस्था होती थी कि देख करके दंग हो जाना पड़ता था कि ये मैनेज कैसे कर रहे हैं। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, जो एशिया का ही हिस्सा है, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिसके जीडीपी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वहां की आप साफ सफाई देख करके दंग रह जाएंगे। तो चलिए, हम अपने देश में हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, होना ही चाहिए, तो वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर सच में हम अपने देश से प्यार करते हैं तो उसे खूबसूरत और अच्छा बनाने की कोशिश भी होनी चाहिए। नहीं तो बस प्यार करते हैं कहने से क्या होता है, कम से कम हमारा कुछ उसमें योगदान भी तो हो। तो मित्रों, ये दो कंटेंट मैंने आपको बताया कि जब स्वच्छता पर कोई बात होती है तो आप एक कंटेंट डाल सकते हैं कि ऐसा भी किया गया है। मित्रों, अब मैं आता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। मित्रों, अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है, मैंने जानबूझकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले टॉपिक को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि इस पर एक लंबी चर्चा की जरूरत है और इस पर आपको किताबों में मिल भी जाएगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में आप पाएंगे कि हमारी जो पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देखिए कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। मैं आपके केवल ध्यान में ला रहा हूं बस, एक तो हमारे पास केंद्र है, इसके बाद हमारे पास राज्य है, इतने सारे राज्य हैं, राज्यों के बाद एक हमारे पास जम्मू कश्मीर भी राज्य है जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वो थोड़ा सा अलग संविधान की धारा 370 के तहत अलग किस्म की व्यवस्था है। इसके बाद हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी भी एक तरीके से दो तरह के हैं। एक तो वह कि जो प्योरली यूनियन टेरिटरी है, जहां प्रशासक होते हैं और केंद्र सरकार सीधे वहां नियंत्रण, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी है। दूसरी तरफ आपको दो टेरिटरी अलग तरह की मिलेंगी, जिसमें एक दिल्ली है और दूसरा पुद्दुचेरी है, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी है। आप वहां देखिए कि स्टेट असेंबली भी है, राज्य भी है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग जी थे, वो राज्यपाल नहीं कहलाते, वो उपराज्यपाल कहलाते हैं। ये एक तरह की व्यवस्था है। इसके बाद कुछ राज्यों के लिए हमारे संविधान में विशेष उपबंध किए गए हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें मणिपुर भी एक राज्य है। और मणिपुर में जो अभी समस्या चल रही है मित्रों, उसमें अब समय नहीं है बातचीत बात करने का, लेकिन मैं आपको एक प्रेस क्लिपिंग्स उसके लिए जरूर प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। कुछ दोस्तों राज्य तो है लेकिन उनके क्षेत्रों को कुछ अनुसूचित क्षेत्र में डाल दिया गया है, शेड्यूल्ड एरिया में डाल दिया गया है, जो खासकर जनजातीय क्षेत्र हैं। उन जनजातीय क्षेत्रों में एक्ट अलग तरीके से काम करते हैं, वहां के राज्यों के राज्यपालों को उन अनुसूचित शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग से अधिकार दिए गए हैं, जिसमें मणिपुर भी शामिल है। वहां आपने अगर ध्यान दिया हो, जो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था है, तो वहां के लिए 1996 में एक अलग से कानून लाया गया, पेशा कानून, जिसको पंचायत एक्सटेंशन एक्ट कहते हैं। वो जो पेशा कानून है उन क्षेत्रों में अलग तरह की पंचायती राज्य की व्यवस्था करता है, ताकि वहां की उनकी स्वायत्तता बनी रहे, उनकी अपनी संस्कृति बनी रहे, या यूं कह लीजिए कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उनके ट्रेडिशन से फिट बैठ सके। तो ये कुछ हमारे प्रशासनिक जो स्वरूप हैं उनकी मैंने चर्चा की है मित्रों। उसी में से दिल्ली का भी स्वरूप है। तो आप अब एक काम करेंगे कि आप किताबों से जा करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को खासकर याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने पहले एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनको प्रोवाइड किया है दिल्ली राज्य के संकट को लेकर के। राज्य का संकट क्या नहीं कहना चाहिए, मतलब दिल्ली में मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो लगातार इस तरह की तकरारें चलती थी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी जो लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती थी, उसको लेकर के मैंने एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया है, उसे आप चाहे तो सुन सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आज आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और वो सब बहुत अच्छी क्लिपिंग्स हैं, और मैं चाहूंगा कि उन सबको आप बहुत ध्यान से देखें। एक इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग्स है, आपको देखना है, मतलब इसको पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद हिंदू की क्लिपिंग्स है दोस्तों मिसिंग चिल्ड्रेन के ऊपर, वो बहुत अच्छी क्लिपिंग है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक क्लिपिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक क्लिपिंग है राम माधव की, जो उन्होंने खासकर इंडियन ओशन को लेकर के लिखा है। यह भी मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक बार पढ़ना ही चाहिए। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स से इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम मैं ले रहा हूं। शुभम टोपन्नावर, सोनल आर्मो, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, कृष्णानंद कुशवाहा, नितिन भारद्वाज और सुभाष कुमार नालंदा बिहार से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, और दो दिनों के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो मैडम की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से इन दो दिनों के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और खासकर संडे के क्रिसमस की हम सभी आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और बधाइयां देते हैं। तो दोस्तों दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।